प्रिय मित्रों नमस्कार। आज 12 जुलाई 2016 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स, इसी क्रम में मैं स्वागत करता हूं अपने उन तीन नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की अगले साल फरवरी मार्च में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन साथियों के नाम हैं समीर पवार सहारनपुर से, प्रीति ध्रुवे उइके बैतूल मध्य प्रदेश से और मंगल कुमार यादव मधुबनी से। तो समीर, प्रीति और मंगल, आप तीनों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, अब इस स्वागत के बाद मैं बधाई देना चाहूंगा दो स्टूडेंट को। उसमें से एक हैं कृष्ण कुमार जो इलाहाबाद से हैं और दूसरे हैं अनिल देव। ये दोनों हमारे फोर्थ बैच के स्टूडेंट रहे हैं। तो कृष्ण कुमार और अनिल, आप दोनों को मैं अपने सभी प्रिय श्रोताओं की ओर से, एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। और बधाई इस बात के लिए कि कृष्ण कुमार ने यूजीसी नेट परीक्षा में जेआरएफ क्वालिफाई की कर लिया है, उनका चयन हो गया है। और अनिल देव ने एमपीपीएससी के प्री एग्जाम 2016 में सफलता पाई है। तो आप दोनों को इन सफलताओं के लिए बहुत बहुत बधाई और भविष्य की बेहतर सफलताओं के लिए शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, अब मैं आता हूं आज के लाइफ मैनेजमेंट पर। आज के लाइफ मैनेजमेंट के बारे में मैंने ये सोचा है कि मैं आपको कुछ अब इस तरह की चीजें भी बीच बीच में बताया करूं जो आपको प्रेरित करने के साथ ही साथ कहीं न कहीं आपके नॉलेज में भी इजाफा करें। तो यही सोच करके मित्रों, अब मैंने अपने लिए, आप सबके लिए अपनी ओर से कुछ दूसरी तरह की चीजें चुनी हैं। तो आज उसी का एक छोटा सा नमूना मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। फ्रेंड्स, मुझे यकीन है कि आपने चार्ल्स डार्विन का नाम जरूर सुना होगा। चार्ल्स डार्विन, जिन्होंने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया, आप अक्सर बातचीत में उपयोग भी करते हैं और कभी कभी बोलते हुए लोगों को सुनते भी हैं कि बंदर हमारे पूर्वज रहे हैं, मतलब हम वानर से मनुष्य के योनि तक पहुंचे हैं। एक्चुअल में जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है, जिसको हिंदी में हम विकासवाद का सिद्धांत कहते हैं, इसको देने वाले थे चार्ल्स डार्विन, जिनके इस खोज ने, इस सिद्धांत ने सच पूछे तो दुनिया में तहलका मचाकर रख दिया था। इनका जन्म 1882 में हुआ था और ये 73 इयर्स तक समझ लीजिए कि इस धरती पर रहे और अपने विचार और शोध के जरिए मानवीय चेतना को समृद्ध करते रहे और विकसित करते रहे, और यही नहीं बल्कि उसे नई नई दिशा देते रहे। तो फ्रेंड्स, आज मैं चार्ल्स डार्विन के बारे में कुछ आपको बताने जा रहा हूं, और मैं ये जो बताने जा रहा हूं मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं, जो उनकी जीवनी में मुझे जो बड़े थोड़े से खूबसूरत अंश मिले मैं वे अंश आपको पढ़ाकर सुना रहा हूं। ये पूरी जीवनी नहीं है, जीवनी के बीच बीच के कुछ अंश हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए थोड़े उपयोगी हो सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपको बताना चाहूंगा कि इससे पहले कि हम उनके बारे में बात करें, कि ये जो चार्ल्स डार्विन रहे हैं, जिसके मस्तिष्क को आज हम एक महान और असाधारण मस्तिष्क में से एक मानते हैं, उनके स्कूल की रिपोर्ट देखिए। ओसेसबरी ग्रामर बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते थे और जो उनका जो सर्टिफिकेट मिला था, उनकी जो मार्कशीट थी, उस मार्कशीट में जो शब्द अंकित हैं, सबसे पहले तो मैं आपको वो पढ़कर सुनाता हूं और इसके सुनाने के पीछे मकसद है। मकसद यह है दोस्तों कि हमारी जिंदगी कहीं भी थमती नहीं है, कोई भी चीज हमारे जिंदगी की सीमाओं का निर्धारण नहीं कर सकती जब तक कि हम उन सीमाओं को स्वीकार न करें। अभी मैंने कहा कि चार्ल्स डार्विन एक असाधारण मस्तिष्क में से एक थे। अब आप देखिए कि उनके जो बोर्डिंग स्कूल है उसमें क्या लिखा हुआ था, उसकी मार्कशीट में क्या लिखा हुआ था, रिपोर्ट कार्ड है, बल्कि बेसिकली मार्कशीट नहीं करना चाहिए, वो एक रिपोर्ट कार्ड वहां उस समय मिला करता था। अंग्रेजी उसके सामने लिखा हुआ था एवरेज यानी कि औसत, लैटिन उसके सामने भी लिखा हुआ था औसत, फिर था गणित, मैथमेटिक्स उसके सामने भी लिखा हुआ था एवरेज, इसके बाद था भूगोल, ज्योग्राफी उसके सामने भी मेंशन था औसत, फिर हिस्ट्री की बारी आई तो मजेदार बात है कि हिस्ट्री के सामने भी औसत था, और अगर सबके सामने औसत है तो भला फ्रेंच के सामने गुड कैसे हो सकता था, फ्रेंच के सामने था औसत, उसके सामने भी औसत था। और इसके बाद टिप्पणी क्या की गई थी, रिमार्क क्या किया गया था ओवरऑल असेसमेंट के बाद, कि चार्ल्स यानी कि चार्ल्स डार्विन एक दब्बू किस्म का बालक है, वह दूसरे बच्चों के साथ घुल मिल नहीं पाता है, वह केवल फूल पत्ते चींटी कीड़े आदि इकट्ठे करने में लगा रहता है, ये उसकी टिप्पणी थी। दोस्तों यहां से चार्ल्स डार्विन के जिंदगी की शुरुआत होती है, और शायद आपको मालूम हो कि चार्ल्स डार्विन एक जहाज में बैठकर, पानी के जहाज में बैठकर 5 साल तक लगातार समुद्रों की यात्रा करते रहे थे। उस समय उनकी उम्र 20-22 साल की थी, और जब वो 8 साल के थे तभी उनकी मां नहीं रही थी, मैं सारी आपको पृष्ठभूमि बता रहा हूं। तो 20-22 साल के रहे होंगे कि उन्होंने एक बीगल नाम के पानी के जहाज में बैठ करके और यात्रा करनी शुरू की। 5 साल तक वो समुद्री यात्रा करते रहे। अगर वो समुद्री यात्रा का आप वर्णन पढ़ेंगे तो बिल्कुल एक छोटा सा उनको एक केबिन सा मिल गया था, और उसमें क्या करते थे वो कि समुद्र से जो फॉसिल्स मिल गए, जैसे अगर कहीं आइलैंड पर वो जहाज रुका तो वहां से पत्थर इकट्ठे कर लिए, हड्डियां इकट्ठी कर ली, जो भी फॉसिल्स फ्यूल फॉसिल्स मिला इकट्ठे करते जा रहे हैं और जहाज में लादते चले जा रहे हैं, और केवल ये सब कुछ कर रहा है 20-22 साल का लड़का। लेकिन यही लड़का जो इतनी कठिन यात्रा कर रहा है, 1-2 साल नहीं 5 साल तक, इम्पॉर्टेंट बात दो है यहां दोस्तों, कि वो समुद्र से बहुत डरने वाला लड़का था, उसको समुद्र से बहुत डर लगता था, और फिर समुद्र की यात्रा कर रहा है, 1 महीने 2 महीने की नहीं, ये कोई ऐसी जर्नी नहीं है कि वो मुंबई से और इंग्लैंड जा रहा है, 5 साल तक। और दूसरी बात, आलीशान मकान में रहने वाले चार्ल्स, जो वैसे जो चार्ल्स रहते थे जहां आलीशान मकान में रह रहे थे, यानी कि अपनी उन सुख सुविधाओं को छोड़कर चार्ल्स 5 साल तक इस तरह से भटकते रहे, राइट फ्रेंड्स। तो ये मैंने उनकी शुरुआत की कुछ चीजें आपको बताई मैंने। अब आप देखें कि कुछ छोटे छोटे अंश मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं जो उनकी जीवनी में मिलते हैं, जिसमें आपको अपनी जीवनी की बहुत बड़ी छाया मिलेगी, अपने जीवनी के लिए बहुत बड़े मार्गदर्शन मिल सकते हैं, उनके बारे में अब जानिए। चार्ल्स डार्विन के पास पहले से शरीर रचना शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र आदि की कोई डिग्री नहीं थी। उन्होंने जो कुछ भी सीखा था बीगल यात्रा के दौरान ही सीखा था, मैंने बताया कि उनके जहाज का नाम था बीगल। इस कारण वे जीवों का जो भी वर्गीकरण कर रहे थे वह निष्पक्ष हो रहा था, और इसी कारण उसमें एकदम नयापन था, मतलब कि जो अज्ञानता थी इन विषयों की, जो अज्ञानता थी वही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई, वही उनका सबसे बड़ा ज्ञान बन गया, क्योंकि अब वो निष्पक्ष होकर के चीजों को देख रहे थे, मतलब उनके बैक ऑफ द माइंड कुछ पहले से पूर्व निर्धारित धारणाएं नहीं थी, इसीलिए वो एक नई चीज लेकर आए। आप देख रहे हैं दोस्तों, एक बहुत विचित्र सी घटना देखिए जो उनके जीवन में घटी, और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों कि ये क्या क्वांटम फिजिक्स का ये कौन सा तथ्य है। आपको ध्यान होगा कि मैंने कभी आप लोगों से चर्चा की थी, शायद ऑडियो फॉर एक्सीलेंस में चर्चा की थी, कि एक बहुत विचित्र सी स्थिति दुनिया में देखने को मिलती है कि यदि कोई विचार एक जगह चल रहा है तो पता लगा वही विचार और कई जगह भी चल रहे हैं, बिना किसी बातचीत के, कोई नहीं, एक दूसरे के बीच में कोई संपर्क नहीं है, इसके बाद वहां भी यही हो रहा है। अगर गौतम बुद्ध हमारे यहां कुछ सोच रहे थे, महावीर स्वामी हमारे यहां कुछ सोच रहे थे, तो पता लगा सुकरात प्लेटो वहां भी कुछ और वो लोग अपने ढंग से सोच रहे हैं, लगभग उसी के आसपास। ऐसी बहुत सी घटनाएं मिलती हैं जिन्हें देखकर हम आश्चर्यचकित रह जाते हैं। अब आप एक घटना का वर्णन पढ़िए। 18 जून 1858 के दिन चार्ल्स डार्विन ने अपनी डाक खोली। उसमें मलाया में रह रहे अंग्रेज प्रकृति विज्ञानी का एक लेख था जिसके साथ चार्ल्स का पत्र व्यवहार चल रहा था। जब डार्विन ने वह लेख पढ़ा तो वे दंग रह गए। उस लेख में डार्विन ने अब तक विकसित सिद्धांत का सार डार्विन के अब तक विकसित सिद्धांत का सार था। चार्ल्स ने सन 1944 में जो खाका तैयार किया था वह पूरा का पूरा उस लेख में समाया हुआ था। उन्होंने अपनी पुस्तक के वे जो 18 अध्याय तैयार किए थे उनके शीर्षक इस लेख में उल्लेखित थे। कैसा अजीब संयोग था यह, हजारों साल से जीव के इस तर्क संगत विकास की बात किसी के मन में नहीं आई थी, और जब आई भी तो एक साथ दो उन लोगों के मन में जो दुनिया के अलग अलग छोरों पर बैठे हुए थे। इस दूसरे पर बैठा जीव विज्ञानी मलाया में रहने वाला वालेस था, उसका नाम वालेस था। डार्विन ने जल्दी से अपना लेख दुनिया के सामने लाने का फैसला किया। और मित्रों, अगर यहां डार्विन थोड़ा सा लेट हो जाते तो हम वालेस का नाम जान रहे होते, डार्विन का नहीं। ठीक उसी तरह से जैसे आज हम डार्विन का जान रहे हैं, वालेस का नहीं। आप देख रहे हैं कि तत्काल का कितना बड़ा महत्व होता है, कितना बड़ा जादू है तत्काल का। मित्रों, एक और भी विचित्र सी घटना बताई जाती है कि ग्राहम बेल जब अपने टेलीफोन का पेटेंट करा करके पेटेंट ऑफिस से बाहर निकले तो एक घंटे के बाद फिर एक और वैज्ञानिक आया अपने पेटेंट कराने के लिए अपने आविष्कार का, और उसको बताया गया कि अनफॉर्चुनेटली एक घंटे पहले ही इस आविष्कार का पेटेंट ग्राहम बेल करा चुके हैं। अद्भुत बात और विचित्र बात, समझ में नहीं आती कि यह सब क्या होता है और कैसे होता है, गॉड नोस। मित्रों, अब मैं जा डार्विन के एक दो बातें, और वक्त थोड़ा सा कम है, मैं आपको सुना करके खत्म करूंगा कि चार्ल्स डार्विन के पीछे कोई संस्था नहीं थी। न्यूटन ने रॉयल सोसाइटी को अपना कार्यक्षेत्र बनाया था और माइकल फैराडे ने रॉयल इंस्टीट्यूशंस को, पर चार्ल्स के लिए ग्रामीण क्षेत्र का उसका घर ही सब कुछ था। चार्ल्स डार्विन कभी अपने बच्चों से न तो डांट डपट की और न ही कभी दबाव डाला। उन दिनों नौकरों को डांटने फटकारने का बहुत रिवाज था, पर डार्विन छोटे से छोटे काम के लिए भी अपने नौकरों से निवेदन करते थे। वे किसी भी असहाय व्यक्ति पर होने वाले अत्याचार को बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। डार्विन का कोचवान भी कभी उनके सामने घोड़ों को चाबुक मारने की हिम्मत नहीं कर सकता था। डार्विन को यह ज्ञात था कि यदि घोड़ों से ज्यादा काम लेना है तो उनकी नस्ल सुधारनी होगी, इसके लिए तरह तरह के प्रयोग करने होंगे, इस तरह मारने पीटने से कुछ नहीं होगा। और मित्रों, आखिरी में एक छोटा सा टुकड़ा और देख लीजिए कि चार्ल्स खुद क्या कहते हैं। अपने जीवन पर चार्ल्स डार्विन को बड़ा संतोष था। उन्होंने लिखा, उनकी ऑटोबायोग्राफी, उन्होंने लिखा कि मेरी क्षमताएं तो सामान्य किस्म की ही थीं, पर मुझे आश्चर्य हो रहा है कि मैंने उन्हीं की सहायता से वैज्ञानिक जगत को अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपनी राय से सहमत करा लिया। ये चार्ल्स की आत्म स्वीकृति है दोस्तों कि अपने उन्हीं सामान्य किस्म की क्षमताओं से मैंने पूरी की पूरी दुनिया को अपनी बात से सहमत करा लिया। तो दोस्तों, यहां जो मैं आपसे खासकर कहना चाह रहा हूं वो कुल मिलाकर यह कि समझने की कोशिश कीजिए कि क्षमताएं इनफैक्ट क्या होती हैं। क्षमताएं एक तरफा नहीं है, क्षमताएं परीक्षा में नंबर लाना ही नहीं है, क्षमताएं असीमित होती हैं, अनंत होती हैं और अलग अलग क्षेत्रों में होती हैं। बस आपको आइडेंटिफाई करके उसे पकड़कर और बस उस पर लग जाना है, वो क्षमता एक दिन दुनिया के सामने आ जाएगी। तो मित्रों, अब मैं आता हूं इसके बाद कल के AIR न्यूज पर। दोस्तों, आपको सुनकर के शायद इस बात की खुशी होगी कि कल के AIR न्यूज में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको सच पूछिए तो मैं आज अपनी बातचीत का आधार बना सकूं। इनफैक्ट सच में ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मित्रों फिर भी कुछ बातचीत तो करनी ही होती है और हम बातचीत करेंगे। बस थोड़ा सा आपको एक दो बातों की तरफ आपका ध्यान चाहूंगा, वो ये कि पहली खबर तो थी ही कि प्रधानमंत्री जी केन्या की यात्रा पर थे और आपने देखा कि केन्या की यात्रा के बारे में काफी डिटेल बातें न्यूज में बताई गई थी जो आपके लिए सिविल सर्विस के लिहाज से कंटेंट के रूप में इम्पॉर्टेंट नहीं है। हम इसको इम्पॉर्टेंट मान रहे हैं केवल अफ्रीका की यात्रा के संदर्भ में और टोटल अफ्रीका के संदर्भ में, इसके बारे में हम लोग बातें कर चुके हैं। फिर दोस्तों शेयर मार्केट की बात थी कि शेयर मार्केट एक दिन में 500 पॉइंट्स बढ़ा जो काफी एक मायने रखता है। रीजन सच पूछे तो उतने कन्विंसिंग नहीं थे, इसके बारे में मैं कोई कमेंट अभी नहीं करना चाहूंगा। इस तरह के फ्लक्चुएशंस होते भी रहते हैं लेकिन चूंकि एक दिन में इतना बढ़ा है तो बहुत से रीजन्स हो सकते हैं तो उस पर हम नहीं जाएंगे और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है भी नहीं। आपको तो केवल शेयर मार्केट की जो कार्य प्रणाली है, उसका जो स्वरूप है, कैसे काम करता है, क्यों उठता गिरता है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी रखने की जरूरत होती है। और लास्ट में जो एक छोटी सी खबर के रूप में थी, पब्लिक स्पीक का जो सब्जेक्ट था दोस्तों वो कल भी यही था, नमामि गंगे परियोजना पर पब्लिक स्पीक का है। और मैं आपको पहले भी बता चुका था जिस दिन ये परियोजना लॉन्च हुई थी 150-250 जगहों पर या 200 जगहों पर, तो मैंने आपको बताया था कि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर पिछले साल मेन्स में क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो हालांकि ठीक है अब सीधे सीधे क्वेश्चन फिर से पूछा जाएगा इस बात की संभावना थोड़ी सी कमी है, लेकिन फिर भी चूंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है तो आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो मित्रों न्यूज के बारे में आपको मैं कल किए गए आपसे एक वायदे के आधार पर कुछ बातें शेयर करना चाहूंगा जो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मित्रों देखिए सिविल सर्विस के प्रिपरेशन के लिए एक बहुत बड़ी बात है, अगर आप सिलेबस के इंस्ट्रक्शन पर जाएंगे जो बहुत शुरू में यूपीएससी ने जो वर्ड यूज किया है वो है अवेयरनेस। उसने कहा है कि आप अपने समय और समाज के प्रति कितने अवेयर हैं, ये टेस्ट करना मेन एग्जामिनेशन का पर्पज है। आप उसे चाहें तो बड़े आराम से इत्मीनान के साथ पढ़ सकते हैं और बल्कि चाहना न चाहना वो आपके हाथ में नहीं है, आपको पढ़ना ही चाहिए कि बेसिकली मेंस एग्जामिनेशन का पर्पज क्या है, यूपीएससी उसमें क्या चाह रही है। उसमें उन्होंने वर्ड यूज किया है अवेयरनेस। इसका मतलब है कि चारों तरफ जो घटनाएं घट रही हैं आप उनके बारे में अवेयर रहिए। देखिए जब हम घटनाओं के अवेयरनेस के बारे में बात करते हैं तो उसके दो पक्ष होते हैं। पहला पक्ष है घटनाएं घट रही हैं, एक एक छोटे छोटे टुकड़ों में घटनाएं घट रही हैं और लंबे समय से एक ही तरह की घटनाएं अलग अलग फॉर्मेट में घटती जा रही हैं। थोड़े से उनके रूप अलग हैं लेकिन लगभग लगभग ये कह लीजिए कि उनमें कहीं न कहीं एक लिंक सा है, ये घटनाएं घट रही हैं। तो जब कई घटनाएं घट जाती हैं, मान लीजिए कि साल डेढ़ साल में कुछ उसी तरह की एक जैसी दिखाई देने वाली या कह लीजिए एक ही प्रजाति की जब घटनाएं घट जाती हैं तो फिर सच पूछे तो अब आपके सामने जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं चैलेंज ये आता है कि उन घटी हुई घटनाओं को किस तरीके से आप एक थ्योरी में कन्वर्ट कर सके, एक सिद्धांत में कन्वर्ट कर सके, या इसे और सरल शब्दों में कहना चाहें तो आप कह सकते हैं कि उसे एक विचार विशेष में बदल सके। अभी पिछले अगर 3 साल के पेपर्स को आप देखेंगे जो पैटर्न थोड़ा सा बदलाव पैटर्न में बदलाव किया गया है मित्रों, उसमें आपको ये चुनौती दिखाई देगी। अगर आप बहुत ध्यान से प्रश्नों को पढ़ेंगे और खासकर ऐसे प्रश्न जो सोशल एस्पेक्ट और पॉलिटिकल एस्पेक्ट से रिलेटेड है, सोशल और पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स में तो वो चीज उतनी नहीं होती है, इकोनॉमिक्स में तो फोकस्ड तरीके से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं क्योंकि मालूम है कि इकोनॉमिक्स थोड़ा सा एक साइंटिफिक, ज्यादा साइंटिफिक सब्जेक्ट है, थोड़ा सा टेक्निकल भी है तो प्रश्न पूछते समय वो थोड़ी सी सावधानी रखते हैं, लेकिन जो सोशल और पॉलिटिकल से संबंधित जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें ये चीजें बहुत देखने में आती हैं। आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अनसॉल्व्ड पेपर पिछले 2-3 साल के देखने की कोशिश कीजिए तो शायद मेरी बात आपकी थोड़ी सी समझ में आ जाए। नो डाउट कि अब मैं अपनी बात थोड़े से उदाहरण के जरिए भी आपको स्पष्ट करना चाहूंगा। मित्रों देखिए कि पिछले कुछ महीनों की आप घटनाओं को देखिए, खासकर महिलाओं से संबंधित जो घटनाएं घट रही हैं, अब उनको छोड़ दीजिए, निर्भया कांड और वो ये एक एक समय तक वो बहुत चर्चा में रही और उनके आधार पर आपने देखा कि प्रश्न भी पूछे गए हैं सीधे सीधे कि इतने ज्यादा कांड हो रहे हैं दुष्कृत्य के और उसके लिए सरकार इतने कानून भी बना रही है लेकिन इसके बाद भी चीजें नियंत्रण में नहीं आ रही है, इस तरह के अपराध नियंत्रित नहीं हो रहे हैं तो इसके लिए क्या किया जाना चाहिए, इस तरह के प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अब आप महिलाओं के अब अभी पिछले जो तीन चार पांच महीने से जो घटनाएं घट रही हैं उनको थोड़ा सा वाच कीजिए, वो घटनाएं थोड़ी सी दूसरी तरह की हैं और बड़ी सकारात्मक किस्म की है। वो तो एक नकारात्मक घटना थी लेकिन ऐसा नहीं कि समाज में हर समय केवल नकारात्मक चीजें ही हो रही हैं, क्योंकि अगर एक चीज बहुत ज्यादा समय तक नकारात्मक रूप लेकर के सफर करती है तो बटने चले कि उसके प्रतिरोध में फिर से कुछ न कुछ सकारात्मक चीजें तो आएंगी, उसका प्रतिरोध तो होगा ही। जो मेरे फर्स्ट से फोर्थ बैच के स्टूडेंट याद करने की कोशिश करें, मैंने जो उनको समाज के विकास का जो सिद्धांत बताया है, वाद प्रतिवाद और संवाद, वो जो स्थिति है उसको यहां आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए, वो दौर था जब इस तरह की घटनाएं बहुत हो रही थी, दुष्कृत्य की घटनाएं बहुत हो रही थी। अब पिछले तीन चार महीनों में मैं आपको केवल दो तीन उदाहरण दे रहा हूं कि कैसे अवेयरनेस किसको कहते हैं और फिर आप उसको कैसे विचारों में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि थ्योरी में कन्वर्ट करेंगे। दोस्तों आप देख रहे हैं कि जब भी सिविल कंडक्ट रूल क्या कहते हैं वो समान संहिता कानून की बात होती है, सिविल कंडक्ट रूल नहीं कहना चाहिए, वो गलत शब्द है, समान नागरिक संहिता की बात होती है तो इस समान नागरिक संहिता के बातचीत में अब खासकर जो इस्लाम में प्रचलित कुछ परंपराएं हैं उन पर ज्यादा बात होने लगी है। जैसे अभी तलाक के मामले को लीजिए, इस्लाम में तीन बार तलाक कहने पर तलाक तलाक हो जाता है। कुछ समय पहले आपने देखा कि पाकिस्तान में किस तरह के लॉ पारित किए गए और ओपनली समर्थन किया गया कि पति को पत्नी अपनी पत्नी को पीटने का अधिकार है, कुछ इस तरह की बातें हुई और वहां इसका एक जबरदस्त विरोध भी हुआ। यहां तक कि मानवाधिकार मतलब इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने भी इसके खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। भारत में भी वही चीज प्रचलित है तलाक के मामले, और अब कुछ ऐसे इस्लामिक संगठन भी हैं, इस्लाम धर्म से जुड़े हुए जो संगठन हैं या इस्लामिक समाज से जो जुड़े हुए संगठन है, मुस्लिम संगठन जो हैं, वो अब इस तलाक के इस परंपरा के विरुद्ध खड़े हुए हैं कि नहीं नहीं ये गलत है, इसमें सुधार होना चाहिए। महिलाएं भी इसके लिए अब सामने आई हैं। तो ये पहली बार हो रहा है कि अब तलाक को समान अगर संहिता में लेकर के आया जाएगा तो वो एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के पैरेलल हो जाएगा, जहां हमारे यहां प्रोविजन किया गया है कि स्त्री और पुरुष समान हैं। एक घटना ये देखिए, तो लगातार इस पर बातचीत हो रही है। दूसरी बात अभी देखेंगे कि अगर अभी के अखबारों पर आप थोड़ा सा ध्यान दे रहे हो तो दो चीजें आपको बड़ी गजब की मिलेंगी कि जो शनि मंदिर है सिंगड़ापुर का, जो शनि मंदिर है, आपको मालूम है कि दो तीन महीने पहले उसमें महिलाओं के प्रवेश को लेकर के बहुत आंदोलन हुए और उस समय जब कोर्ट में मामला गया तो कोर्ट ने साफ कहा कि आप महिलाओं को मंदिर में जाने से नहीं रोक सकते, समान अधिकार है। इसके बाद भी आप देख रहे थे कि समाज विरोध कर रहा था, सारी चीजें हो रही थी और अंततः है अभी चार पांच दिन पहले उनके प्रवेश को अलाउ कर लिया गया और महिलाएं उसमें गई और उन्होंने पूजा किया। ठीक मित्रों, इसी तरह से एक खबर आई है आपको, आपके अगर ध्यान में वो बात, वो खबर चूंकि छोटी खबर थी जबकि मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी खबर बननी चाहिए थी, बहुत अहम खबर बननी चाहिए थी कि ईद के दिन जो लखनऊ का जो ऐशबाग मस्जिद है उसमें महिलाओं के लिए भी मस्जिद अता करने की स्वीकृति मिली और 5000 के आसपास महिलाओं की संख्या थी जो वहां इकट्ठी हुई और उन्होंने नमाज अदा की। ये दो घटनाएं, शनिपुर सिंगड़ापुर मंदिर में महिलाओं का प्रवेश और दूसरा ऐशबाग मस्जिद में महिलाओं को का जाकर के वहां नमाज अदा करना और फिर तलाक के मामले के लिए संघर्ष। तो मित्रों ये जो तीन घटनाएं हैं, मैं तो केवल इसको थ्योरी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है इस पैटर्न पर बात कर रहा हूं, ये तीन कंटेंट है। अब आप देखें कि इन तीन कंटेंट की जो सबसे बड़ी खूबी है, पहला तो यह कि धर्म की जकड़न जो है वो टूट रही है ना। अगर मैं इसे व्यंग में कहना चाहूं तो मैं कहूंगा वो दोस्तों कि सिंगड़ापुर मंदिर जाने से शनि देव का कोप हो सकता है या मस्जिद में महिलाओं के जाने से अल्लाह नाराज हो सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद मानसून तो अच्छा बरस रहा है, आकाश से अंगारे नहीं बरस रहे हैं। मैं आपको एक लॉजिक बता रहा हूं, है ना, इस तरह की चीजें आपके दिमाग में मतलब होनी चाहिए, क्योंकि भय दिखाया गया था कि शनि मंदिर में प्रवेश हो जाएगा तो साहब ये अनर्थ हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। चलो कभी कभी अनर्थ हो भी जाता है तो मुझे मालूम है कि फिर धार्मिक वर्ग जो होगा वो कह देगा कि देखो ये शनि मंदिर का परिणाम है, हालांकि जब महिलाएं उसमें नहीं गई थी इसके इससे पहले भी दुनिया भर की इस तरह की घटनाएं होती रहती थी, लेकिन तर्क तो तर्क होते हैं चाहे कुतर्क ही क्यों ना हो। तो मित्रों पहली बात, दूसरी बात आप देखेंगे कि इसमें हिंदू वर्ग भी है और मुस्लिम वर्ग भी है, दोनों में ये एक परिवर्तन आ रहा है। आप देख रहे हैं कि परिवर्तन आ रहा है, और ये परिवर्तन जो है न केवल महिलाओं की तरफ से ही है, मतलब महिलाएं तो मांग कर ही रही हैं, बल्कि उन समुदायों के जो संस्थान हैं उनका भी सपोर्ट उसको मिल रहा है। जैसे मैंने कहा कि कुछ इस्लाम के जो संगठन हैं, जो मुस्लिम संगठन हैं, वे भी अब तलाक के पक्ष में हैं, और जब ऐश बाग में जो इस तरह की व्यवस्था की गई होगी तो व्यवस्था किसने की होगी, कोई मुस्लिम संगठन ही होगा और संगठन में पुरुष ही होंगे। यानी कि अब इस वर्ग में भी एक ऐसा वैज्ञानिक चेतना वाला वर्ग या प्रगतिशील चेतना वाला वर्ग आगे आ रहा है जो इन चीजों को बहुत ही मानवीय आधार पर देखने लगा है, सिर्फ धार्मिक आधार पर नहीं। यानी कि अब जड़ता धीरे धीरे टूट रही है, और फिर कोर्ट कचहरी न्यायालय संविधान तो इन सबके पक्ष में है ही। तो मित्रों ये तीन घटनाएं थी, और इन तीन घटनाओं को मैंने एक सिद्धांत, थोड़ी सी एनालिसिस करके मैंने उसको एक सिद्धांत के रूप में परिवर्तित करने की कोशिश यहां की है, आपको समझाने की कोशिश की है। अब आप देखेंगे कि इसी को आधार बनाकर सिविल सर्विस में एक क्वेश्चन तैयार किया जा सकता है कि पिछले कुछ समय की घटनाएं इस बात को सिद्ध कर रही हैं कि भारतीय समाज की महिलाओं के प्रति जड़ता टूट रही है और उन्हें संविधान के अनुकूल पुरुष के समान दर्जा दिए जाने की शुरुआत हो चुकी है। उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। अब आप देखिए कि इसी तीन घटनाओं को उन्होंने एक क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया और उदाहरण पूछ लिया। आप इन तीन उदाहरणों को थोड़ा थोड़ा दे करके और फिर लास्ट पैरा में थोड़ी सी एनालिसिस कर दीजिए कि ये हिंदुओं में भी हो रहा है या मुस्लिम में भी हो रहा है, इसके लिए पुरुष भी सामने आ रहे हैं, महिलाएं तो इसमें आगे आ ही रही हैं, वहां आंदोलन किए गए, वहां मांग किए गए, तलाक के खिलाफ भी, परंपरा के खिलाफ भी एक तरह से आवाज उठ रही है, और पूरे देश में अब इस पर बहस चल पड़ी है कि समान नागरिक संहिता लागू किया जाना चाहिए। तो इस तरीके से आप लिखेंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे तो आपका एक आंसर तैयार हो जाएगा। तो मित्रों खासकर कल मैं इसी पर आपसे बात करना चाह रहा था, लेकिन वक्त की कमी के कारण वो बातचीत नहीं हो पाई, और आज के जो न्यूज की जो एनालिसिस थी उसमें चूंकि बात करने के लिए कुछ भी नहीं था तो मुझे एक अच्छा अवसर मिला कि जब इस मुद्दे पर मैं आपको थोड़ा सा कुछ बता सकूं, कुछ समझा सकूं। तो मित्रों AIR न्यूज से इतना ही, अब मैं आता हूं न्यूज़पेपर पर। मित्रों न्यूज़पेपर में आज कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्लिपिंग्स हैं। कल भी मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया का आपको एक एडिटोरियल कमेंट प्रोवाइड किया था, मैं आपसे बात नहीं कर सका उस बारे में। आज मैं इकोनॉमिक टाइम्स का कमेंट प्रोवाइड कर रहा हूं जो उसी टॉपिक पर है, और दोस्तों ये टॉपिक है मणिपुर में जो आर्म फोर्स स्पेशल एक्ट जो लागू है उसको लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर एक अपनी राय दी है कि वो भी हमारे देश के लोग हैं और देश के लोगों के खिलाफ इस तरीके से इतने लंबे समय तक आर्मी रूल्स लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि मणिपुर नागालैंड वगैरह में ये लागू किए जाते हैं और लंबे समय तक लागू किया जा रहा है, और उसमें जो आर्मी के पर्सनल जो आर्मी अधिकारी होते हैं उनको बहुत ही कह लीजिए कि एक तरह से असीमित अधिकार प्राप्त होते हैं, जिससे भी उनको लगता है कि ये राष्ट्रद्रोह का इसको इससे खतरा है देश की सुरक्षा को, या ये आर्मी में विद्रोह कराना चाह रहा है, तो आप उनको अरेस्ट कर सकते हैं, कोई भी सजा दे सकते हैं, और जरूरी नहीं कि आप उन्हें न्यायालय के सामने पेश करें। और आपको ये जानना चाहिए दोस्तों, इसका फुल फॉर्म है AFSPA, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट, AFSPA, और ये अंग्रेजों के समय में बना था सेकेंड वर्ल्ड वार के समय में, ताकि वो भारतीयों पर नियंत्रण कर सकें। और फिर वो कंटिन्यू होता रहा, क्योंकि 1941 के बाद 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हो गया था, भारत छोड़ो आंदोलन। तो उनको ये था कि भारत छोड़ो आंदोलन को सप्रेस करने के लिए उन्होंने इस एक्ट को लागू किया। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उसी एक्ट की थोड़ी सी झाड़ पोंछ करके और ये अब आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट बना दिया गया है। तो डेमोक्रेसी में एक्चुअल में इस तरह के एक्ट के जो जरूरत पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये कभी कभी जब बहुत जरूरत हो तभी होना चाहिए। और आप अगर किसी एक स्टेट में या दो स्टेट में इतने लंबे समय तक लगा रहे हैं तो फिर उसको आप उस पर विचार कीजिए, उसकी जरूरत ऐसी नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों ये एक एडिटोरियल कमेंट है, आप ये देख लीजिएगा। और दूसरे भी कुछ आर्टिकल्स हैं फ्रेंड्स और न्यूज़पेपर्स क्लिपिंग्स हैं, वो मैं यहां प्रोवाइड कर रहा हूं, तो उन्हें आप देख लेंगे। खासकर देवेंद्र शर्मा का एक जो लेख है फ्रेंड्स दाल के ऊपर, मोजाम्बिक से भारत सरकार जो दाल आयात करने वाली है उसको लेकर के, उसको आप लोग जरूर पढ़िएगा। हो सकेगा तो हम लोग बाद में उस पर कभी थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे। तो फ्रेंड्स अब मैं आता हूं ईमेल पर, तो सभी ईमेल लिखने वाले दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। अमर सिंह घटवारिया पलवल से उन्होंने लिखा है, तो पर अमर सिंह जो बात आपने कही है कि अगर आप मुझे भेजना चाहते हैं तो आप भेज दें। उन्होंने लिखा है कि इस किताब मेरी कुछ किताबें हैं जिसमें पढ़ो तो ऐसे पढ़ो, और दूसरी वो खासकर हालांकि एक बड़ा मुश्किल है कुछ भी कहना कि वो फोटो स्टेट होकर के बिक रही है, तो आप मुझसे भेज सकते हैं। ये नियमतः गलत है, लेकिन आप भेज करके देखें, हम उनसे बातचीत करेंगे कि फोटो स्टेट करके क्यों बेच रहे हैं। वो किताब ही बेचें तो उनका प्रॉफिट किसी मायने में कम नहीं होगा, सच पूछे तो स्टूडेंट को भी ज्यादा फायदा होगा। वो ऐसा नहीं है कि वो स्टूडेंट को महंगी पड़ेगी किताबें, क्योंकि किताबें सस्ती हैं। वो फोटो कॉपी भी कराएंगे तो आप फोटो कॉपी के भी आप पैसे देते हैं। किताबों में जो पढ़ने का मजा है फोटो कॉपी में पढ़ने का मजा नहीं है, इसकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा है। तो आप मुझे भेजिए तो हम उनसे बातचीत करेंगे। और नवीन और जो फोन है दोस्त, जो ईमेल जो आए हैं फ्रेंड्स, उनमें से कुछ के मैं नाम ले रहा हूं। तनुप्रिया सिंह दिल्ली से, कैलाश चंद्र जोशी रुद्रपुर उत्तराखंड से, नवीन दुबे गोरखपुर उत्तर प्रदेश से, हरि ओम तिवारी इलाहाबाद से, स्नेहाशीष चौधरी और अरविंद प्रताप वर्मा, आप सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। नवीन दुबे जो गोरखपुर से हैं उन्हें विशेष आभार कि उन्होंने एक बहुत अच्छा काम शुरू किया है कि अब वो किसी को भी गिफ्ट के रूप में किताबें देते हैं। तो मित्रों एक अच्छा संदेश आप सबके लिए भी है, मिठाइयां नुकसान भी करती हैं क्योंकि आजकल तो मिठाइयां मिलावट वाली ही आ रही हैं और खराब भी हो जाती हैं। किताब में न तो मिलावट होती है और न किताब खराब होती है। मिठाइयां कुछ दिन की ही होती हैं, किताब लंबे समय तक के लिए होती हैं। मिठाइयों को दो चार पांच लोग खा करके भूल जाते हैं, किताबों को 100-200 लोग भी पढ़ते रहेंगे और फिर वो भूल भी नहीं पाएंगे। तो बहुत अच्छा गिफ्ट है, तो नवीन इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों इसी के साथ ही आज का ये डेली ऑडियो गाइडेंस यहीं समाप्त होता है, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।